नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं रेल संपर्क, शहरी आजीविका मिशन, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं तथा स्वास्थ्य सेवा सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 यात्री रेलगाड़ी शामिल है। प्रधानमंत्री शहरी आजीविका को मजबूत करने के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे, जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए वित्तीय समावेशन के अगले चरण का प्रतीक है। श्री मोदी केरल के रेहड़ी पटरी वालों सहित 1,00,000 लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला द सिल्वा से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा आने वाले वर्ष में इसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने साझा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति शीघ्र ही भारत के दौरे पर आएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत को एक विश्वसनीय और मूल्यवान भागीदार के साथ ही एक जीवंत लोकतंत्र तथा समावेशी विकास पर केंद्रित देश के रूप में देख रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में एक निजी मीडिया चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री वैष्णव ने कहा कि लोग भारत पर एक ऐसे देश के रूप में भरोसा करते हैं जिसके साथ वे सह निर्माण और नई प्रौद्योगिकियों का विकास कर सकते हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सभी 5 स्तरों पर काम कर रहा है। इनमें AI आर्किटेक्चर, अनुप्रयोग, मॉडल, चिप, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा शामिल हैं। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट के बारे में उन्होंने कहा कि AI में अपार क्षमताएं हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार द्वारा अनुमोदित 10 सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण संयंत्रों में से 4 संयंत्रों ने हाल के महीनों में प्रायोगिक उत्पादन शुरू कर दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से औद्योगिकरण, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक उदाहरण है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को जन केंद्रित विकास आंदोलन में बदलने के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत और बिजली की लागत को कम किया है। सरकार ने जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची जारी कर दी है। ये चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की ओर से निर्धारित 30 दिन की अवधि में अभियान चलाया जाएगा। ये चरण 30 सितंबर तक जारी रहेगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार ने केन्या के रक्षा बलों से भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ सहयोग के अवसर तलाश करने को कहा है। वे 3 दिन की केन्या यात्रा के दौरान नैरोबी में 3रे भारत केन्या रक्षा प्रदर्शनी और संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संस्कृति मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर आज से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पराक्रम दिवस का आयोजन कर रहा है। नेताजी के जीवन और विरासत से जुड़े देश के 13 अन्य स्थानों पर भी ये उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगा। वायुसेना इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा बलों का नेतृत्व करेगी। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह निदेशालय के एयर कमोडोर इमरान जैदी ने कहा कि वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर हेमंत सिंह कन्यार श्रद्धांजलि समारोह का नेतृत्व करेंगे। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के पानीचाफोन तीरा रत्सकुल से होगा और पीवी सिंधु का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफी से होगा। इस बीच किदांबी श्रीकांत और पुरुष डबल्स जोड़ी हरिहरन आमस करारून और MR अर्जुन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।